أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف کرم، شکر اس کا کہ اس نے ہمیں فرش سید الشہداء پر بیٹھنا نصیب فرمایا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک پرچم اعضا کو سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرمایا، ہماری قبور کو خدا نے متعال ان کی نورانیت سے منور فرمایا، محشر میں سیدہ کا سایہ نصیب فرمایا، ان کی شفاعت سے سرفراز فرمایا. وقت کے امام کے ظہور کی دعا کے لیے بابا جب بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنے دین کے ذریعے سے ہم انسانوں کی تمام مشکلات کو اور ہم انسانوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ کیا، اور انسان کا وجود اس اعتبار سے ایک پیچیدہ وجود ہے کہ اس کی کچھ ضروریات ایسی ہیں کہ جو سادہ طریقے سے انسان کو اگر دیکھا جائے، صرف اس کے جسم کو دیکھا جائے، تو انسان ان ضروریات کا اندازہ نہیں لگا سکتا. جو دنیا کے نظاموں کے اندر مشکلات میں سے ایک مشکل ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ انسان کی حقیقت کو سمجھنے سے عاجز ہیں. یہ انسان کو اس کے ظاہر کے اندر دیکھتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک دور تھا جب انسان کو صرف اس کے جسم میں دیکھتے تھے اور ان ضروریات کو پورا کرنے سے سمجھتے تھے کہ انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اس کے بعد تھوڑی سی اور بہتری آئی ہے اور احساس کیا کہ نہیں، انسان کی کچھ نفسیاتی ضرورتیں بھی ہیں، اور ان ضروریات میں مثال کے طور پر اس کا سوشلائزیشن ہے، اس کو ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے، سوسائٹی کے اندر رہنے کی ضرورت ہے، اور آج کل کے معاشرے کے اندر جو حتیٰ جن کا کوئی تعلق خدا سے بھی نہیں ہے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی جو سوشل بیہیویئرز ہیں ان کی ضرورتوں کو بھی کہیں نہ کہیں پورا کیا جائے. لیکن ابھی جو مشکل ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ کیا خاندان بھی انسان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. جدید معاشرے اس کو قبول نہیں کر پا رہے، تو ان کے نزدیک خاندان اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے. زیادہ خاندان کے درہم برہم ہونے کی بہت سارے ایلیمنٹس کو قبول کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے، نافذ ہیں، رائج ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح ایک اور بہت بڑی ضرورت ہے جس کا یہ تقریباً انکار کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ پورا نہیں کر رہے ہیں بلکہ انکار کر رہے ہیں، اور وہ انسان کی روحانی ضرورت ہے. جسم کے علاوہ، سوشلائزیشن کے علاوہ، سوسائٹی کے اندر رہنا ہے، تعلقات ہیں، اس کے علاوہ آیا انسان کی کوئی روحانی ضرورت بھی ہے؟ یہ اس کا انکار کرتے ہیں. اچھا، یہ جانتے ہیں بہت سارے لوگ جو پالیسی میکرز ہیں، اسٹریٹجسٹ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر یہ ضرورت ہے. इनकार करेंगे हमारे सामने, लेकिन इसको कहीं ना कहीं मस्नूई तरीके से पूरा करना चाहते हैं, मस्नूई चैनल खोलते हैं। ये एक अजीब पेचीदा मामला है, वो ये कि तमाम तर जरूरतों को मस्नूई रास्तों से पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसकी एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद इंसान के अंदर एक जज्बा है, वो ये किसी सुपीरियर एग्जिस्टेंस को कबूल करना चाहता है, क्योंकि अपने आप को कमजोर देखता है, क्योंकि अपने आप को कमजोर देखता है तो इस कायनात के अंदर किसी सुपीरियर को एक्सेप्ट करना चाहता है, और ये वो जज्बा है जिसको खुदा की समत लेकर जाता है। अच्छा, अब इस बीच में कुछ लोग हैं जो खुदा का इनकार किए बैठे हैं। अब जबकि खुदा का इनकार किए बैठे हैं तो इनको कोई रिप्लेसमेंट चाहिए। एक तो इस वजह से रिप्लेसमेंट चाहिए, दूसरा ये कि इनको अपनी बातों को मनवाने के लिए कोई और रुख चाहिए, कोई और वजूद चाहिए जिसकी वजह से अपनी बातों को मनवाए। मैं चूंकि ये जुमला कह रहा हूं इसलिए और इसकी वजाहत के लिए एक और मतलब आपकी खिदमत अर्ज करना चाहूंगा, पहले भी कई दफा अर्ज कर चुका हूं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, लेकिन मुनासिबत बनती है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद परवरदिगार आलम ने बुत परस्ती को मना किया, शिद्दत के साथ मना किया। मसलन अहले किताब को एक्सेप्ट किया, अहले किताब मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी को नहीं मान रहे थे, लेकिन अहले किताब की सैंक्टिटी को, उनके तकद्दस को फिर भी खुदा ने एक्सेप्ट किया। मिसाल के तौर पर उनकी इबादत गाहों का एहतराम किया, उनको तोड़ने का हुक्म नहीं दिया, बुतों को नहीं महफूज किया, बुतों की मुखालिफत की, शिद्दत के साथ मुखालिफत की। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मिसकंसेप्शन की वजह से कोई ये कहे कि भाई हम फला इबादत गाह में गए, वहां पर भी मुजस्मे रखे थे, तो इन मुजस्मों में और उस बुत कदे में इनमें क्या फर्क है? यहां पर भी तो मुजस्मे, और आप जाकर देख लीजिए पूरी दुनिया के, ये जो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, इबादत गाहें बनी हुई हैं, इनमें मुजस्मे लटके हुए, जगह जगह मुजस्मे लगे हुए। तो कोई मुमकिन है क्या है कि भाई ये भी तो बुतकदे हुए, इनमें भी तो मुजस्मे लटके हुए? तो खुदा ने इनको बुतकदा नहीं कहा, इनकी सैंक्टिटी को कबूल किया। और कुरान करीम में इशारा फरमाता है कि जब जमीन में फसाद बरपा होता है तो इशारतन फरमाता है उस वक्त होता है जब सारी इबादत गाहें तबाह हो जाती हैं, उनमें कनीसाओं का तस्करा भी करता है। इबादत गाहें तबाह हो जाएं तो फसाद की निशानी है खुदा तआला के नजदीक। तो इनको एक्सेप्ट किया, क्यों एक्सेप्ट किया? कहा नहीं, बुत परस्ती उसकी मुखालिफत होगी। अब बुत परस्ती से खुदा क्यों लड़ रहा होता है? अगर दीन बीच में है तो खुदा उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अगर महज बुत परस्ती हो, कोई दीन पीछे ना हो सिवाय बुतों के, खुदा तआला उसे कबूल नहीं करता। क्या वजह है? एक वजह शायद यह है कि खुदा तआला जानता है कि अगर दीन बीच में है तो खुदा है, और उस खुदा की कोई किताब भी है, उस खुदा का कोई नबी भी है। बुत परस्ती के अंदर कोई किताब नहीं है, कोई नबी नहीं है। अच्छा, जब किताब भी नहीं है और नबी भी नहीं है, तो ये जो बुत को खुदा मानता है, ये अपने बुत या खुदा के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है, उससे कमांड कैसे लेता है? आप तसव्वुर फरमा रहे, अगर दीन होता है तो दीन में एक नबी होता है जो हुक्म देता है। तो मिसाल के तौर पर चाहे अल्लाह के नबी को उन्होंने आखिरी नबी नहीं माना, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माना हुआ है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कलिमात को रिगार्ड्स देते हैं। मसलन जो यहूदी आबादियां हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं माना, हजरत ईसा को भी नहीं माना और अल्लाह के नबी को भी नहीं माना, दोनों को नहीं माना नबी के तौर पर, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रिगार्ड्स दे रहे हैं। ठीक है, इनकी किताब भी है, ईसाइयों के पास भी किताब है, यहूदियों के पास भी किताब है, साबित हो जाए ये किताब खुदा नहीं है, कोई और है, या इसके अंदर इनहराफ तहरीफ है, ये अलहदा मामला, लेकिन किताब है, नबी है। खुदा ने इनका मुकाबला नहीं किया, बुत परस्ती का मुकाबला किया। क्यों? ना किताब है ना नबी है, तो खुदा का हुक्म आता कैसे है फिर? अब तसव्वुर फरमाए, खुदा का हुक्म आने के लिए ओपन फील्ड है उस बंदे के लिए जो बुत के पीछे बैठा हुआ है, जो हुक्म देना चाहे दे दे। अगर एक शख्स मक्के के अंदर बुत के सामने सर झुकाए हुए है और बुत का निगहबान अबू जहल है, बुत हुक्म देगा क्या? नहीं। कौन हुक्म देगा? अबू जहल हुक्म देगा। कोई लिमिट है कि क्या हुक्म देगा? कोई लिमिट नहीं है, उसके लिए ओपन है कि जो हुक्म देना चाहे बुत के नाम पे दे दे, और कोई पूछने वाला भी नहीं है कि भाई हमें अगर बुद्ध की बात समझ में नहीं आ रही तो तुझे कैसे बुद्ध की बात समझ में आ रही है, ये भी कोई पूछने वाला नहीं। वो बुद्ध के नाम पे हुक्म देगा। अच्छा, अब जब ये बुद्ध के नाम पे इंडिपेंडेंटली हुक्म देगा तो करेगा क्या? ये करेगा कि तमाम इंसानों को बुद्ध के नाम पर अपना गुलाम बनाएगा, ये गुलामी करवाएगा। और ये कि बंदा किसी बंदे का गुलाम हो, ये खुदा को पसंद नहीं है। खुदा कहते हैं हमने इंसानों को आजाद खल्क किया, तुमको आजाद खल्क किया है, आजाद जिंदगी गुजारो। गुलामी, एक दूसरे की गुलामी को पसंद मत नहीं करता वो, तो हमें आजाद जिंदगी की तरफ लेके जाना चाहता है। इस खातिर वो बुत परस्ती को कतअन पसंद नहीं करता। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। आया बुत परस्ती का कोई पैटर्न चेंज हुआ है आज के दौर में? मसलन इस वक्त के दौर में वो बुत परस्ती जो उस जमाने में थी अब नजर नहीं आ रही। तो मैं एक और लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो एक और स्कॉलर ने इस्तेमाल किया था किसी मौके पर, बहुत पुराना, वो ये कि क्या 20वीं सदी की कोई और जाहिलियत है यहां पर? एक तो वो जाहिलियत थी जो अल्लाह के नबी के जमाने में थी, खत्म हो गई थी। अब 20वीं, अब तो हम 21वीं सदी के अंदर आया, 21वीं सदी की कोई और जाहिलियत आ गई है क्या? हमें खतरा है कि हां आ गई है। अब एक और जाहिलियत आ गई है, उस जाहिलियत ने क्या किया है? उस जाहिलियत ने भी उसूलन वही किया है जो 1400 साल पहले की बुतपरस्ती ने किया था। क्या किया? वहां उन्होंने बुत को रखा था खुदा की जगह पे, खुदा को उठाया, खुदा की जगह पे बुत रख दिया कि ये खामोश रहेगा, इसके नाम पर जो हुक्म देना है देते चले जाओ। मुझे खतरा है, और पिछलों को स्टडी करने की वजह से और उनके बताए हुए की वजह से ये खतरा और स्ट्रेंथ पाता चला जाता है कि आज के दौर में एक नया बुत आया हुआ है। वो बुत क्या है? उस बुत का नाम है सोसाइटी। खुदा को रिप्लेस कर दिया है, सोसाइटी को उसकी जगह पे रख दिया है। जो हुक्म खुदा की तरह दिलवाना हो सोसाइटी के चैनल से दे देते हैं, और सबके ऊपर जिस तरह खुदा की पैरवी वाजिब है इस तरह सोसाइटी के पास हुए रूल्स की पैरवी वाजिब है। नहीं हुआ तो जैसे दुनिया आखरत में कोई जहन्नम में जाता है तो वो दुनिया में जहन्नम में चला जाएगा अगर उसने सोसाइटी के पास किए हुए कानून की पैरवी नहीं की। अच्छा, कोई पूछने वाला है कि भाई तुमको इतनी अथॉरिटी कहां से मिल गई? इसके लिए बहुत सारे टाइटल्स जमा हुए हैं। तो जो बात मुझे समझ में आ रही है इस वक्त वो ये कि हम एक और दौर की जाहिलियत के अंदर मुब्तला होगा, एक और दौर की बुतपरस्ती के अंदर मुब्तला हुए, सिर्फ कलर चेंज हुआ हमारे पास। और हमें ये सोचना पड़ेगा कि आया ये जो बुतपरस्ती होगी ये हमें कहां पर लेके चली जाएगी? मफादात उन्हीं के पूरे होंगे जो ताकत में होंगे। और जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूं, अभी इसको आप क्लेम की हद में ले लीजिए, वो ये है कि मुझे कभी नहीं लगता कि दुनिया के अंदर जब नुमाइंदगी के नाम पर नुमाइंदे मुंतखब होते हैं तो ये वाकई लोगों के नुमाइंदे होते हैं जो मुंतखब होते हैं। कभी बिल्कुल डायरेक्टली गलत हो रहा होता है, कभी इनडायरेक्टली किसी चैनल को इस्तेमाल करके किसी और पार्टी के मफादात पर फिर कुछ लोग आ रहे होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये काम नुमाइंदगी की हद में भी हद तक सही नुमाइंदगी की सूरत में अंजाम पाता हो। अलबत्ता जाहिर है कि ये एक डिस्कशन है जो कह सकते हैं किसी हद तक पॉलिटिकल डिस्कशन है, मुझे कि वाकई ये चैप्टर किस तरीके से दुनिया में अंजाम पा रहा है। लेकिन जो बात समझ में आती है वो ये कि हम एक और तरह की गुलामी में कहीं मुब्तला हो रहे हैं, और उस गुलामी के नतीजे में सिर्फ जो मुसीबत आ रही है वो हम अपनी जिंदगी की आजादी से महरूम होते चले जा रहे हैं। मैं इस आजादी के ऊपर और इंसान की जरूरतों के दूसरे पहलू यानी रूहानियत के ऊपर चंद जुमला तौर अर्ज करूंगा। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इंसानों के बनाए हुए निजाम की मुश्किलात में से एक मुश्किल ये होती है कि ये कभी भी इंसान की हकीकत को मुतलक नहीं समझ पाता, जामियत के साथ नहीं समझ पाता। जितना समझ पाता है उतना इसको हल करने की कोशिश करता है, अगर सिंसियर भी हो। सिंसियर नहीं हुआ तो सिर्फ अपने मफादात के पीछे जाएगा, दूसरे की इसकी कोई परवाह नहीं करेगा। अगर हम ये सोचें कि आज के दौर के जो निजाम हैं ये मफाद परस्त नहीं है, मुखलिस हैं, और मुखलिस होते हुए मुश्किल को हल करना चाहते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हत्ता अगर सोचें कि मुखलिस हैं, अब भी एक मुश्किल है। क्या इन्होंने इंसान की हकीकत को समझ लिया? इंसान की जिंदगी के सारे पहलुओं को पहचान लिया? अगर नहीं पहचाना है तो पूरे खुलूस से भी निजाम बनाएंगे तो अधूरे इंसान बनाएंगे। अधूरे इंसान बनाएंगे। अच्छा, ये जो अधूरे इंसान होंगे ये अपनी कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे इसका मतलब है निजाम में नक्स ईजाद करेंगे, और उस नक्स को आप दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों पर बनता हुआ देखेंगे। मिसाल के तौर पर ये इंसान की मानवियत को एड्रेस नहीं करना चाह रहे, क्यों? पहली बुनियाद ये रखी हम खुदा को नहीं मानेंगे, पहली बुनियाद ये रखी खुदा को नहीं मानेंगे। आप कहेंगे नहीं, ये जबकि सेकुलरिज्म के अंदर ये नहीं होना चाहिए था। सेकुलरिज्म के अंदर क्या होना चाहिए था कि हम इस मसले को नहीं छेड़ेंगे कि खुदा है या नहीं है। अगर ट्रू सेकुलरिज्म होता तो उस सेकुलरिज्म के अंदर यह होना चाहिए था कि हम इस मसले को नहीं छेड़ेंगे कि खुदा है या खुदा नहीं है। लेकिन इन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पे क्या किया, हम खुदा को नहीं मानेंगे। और वो किस तरीके से, अभी कुछ वक्त पहले अमेरिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, और केस की नौइयत यह थी कि आया इंटेलिजेंट प्लान को, कि इस यूनिवर्स की क्रिएशन में किसी इंटेलिजेंट बींग ने प्लानिंग की है जो खुदा की तरफ एक रेफरेंस है। अमेरिका के अंदर इस बात पे केस गया कि आया इंटेलिजेंट प्लान को एक ऑप्शन के तौर पर स्कूल में कोई पढ़ा सकता है क्या? आप समझ रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि खुदा है या खुदा नहीं है, नहीं ये बात नहीं हो रही। ये नहीं कह रहे कि खुदा ऑप्शन में है या नहीं है, नहीं ये बात नहीं हो रही। इंटेलिजेंट प्लान यूनिवर्स का है या नहीं है ये भी कंफर्म वर्डिक्ट नहीं दे रहे हैं, हुक्म नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन के तौर पे पढ़ाना चाह रहे हैं सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि नहीं, ऑप्शन के तौर पर भी नहीं पढ़ा सकते। इसका मतलब क्या है, आप ऑप्शन के तौर पर भी खुदा जैसे किसी नजरिए को कबूल करने को तैयार नहीं है, ये सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म के अंदर आपको यह कहना चाहिए था कि कोई माने या ना माने हमें उससे सरोकार नहीं है, स्टेट इस इशू के अंदर दखालत नहीं देगी। और आप सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट इशू कर रहे हैं कि खुदा खुदा नहीं, इंटेलिजेंट प्लान को ऑप्शन के तौर पर भी कोई नहीं पढ़ा सकता। इसका मतलब है आप डेलिबरेटली कह रहे हैं कि हमें खुदा का या खुदा जैसे किसी थ्योरी का नाम भी नहीं सुनना है, नाम भी नहीं सुनना है। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा यह निकलेगा कि ये मादी एतबार से बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेडिकल साइंस के सारे डॉक्टर्स जमा हों और वो कहें कि आज से लंग्स की डिजीज पर कोई काम नहीं किया जाएगा। सही है, लंग्स को स्टडी नहीं किया जाएगा, लंग्स की डिजीज पर काम नहीं किया जाएगा, ऑप्शन के तौर पर भी कोई लंग्स को स्टडी ना करे तो कैंसर की बीमारियां खत्म हो जाएंगी, इससे लंग्स के कैंसर खत्म हो जाएंगे सारे। अब किसी के फेफड़ों में कोई खराबी नहीं आएगी क्या? नहीं, आप कह रहे हो नहीं करोगे, अगर रियलिटी में हुआ तो क्या होगा? तय कर लिया हम सोसाइटी में खुदा को नहीं आने देंगे, नाउज बिल्लाह ताला, ठीक है आपने नहीं आने दिया। ये जो इंसानों के अंदर वजूद में खुदा की तलब है इसका क्या होगा? सॉल्यूशन निकाला इन्होंने, कहा ठीक है ये जो मास्टर प्लानर्स हैं उनको पता है कि ये है, ये मत सोचेगा कि उनको नहीं पता। क्यों? ये जो बहुत बड़ा मास्टर प्लानर है वो शैतान के सिवा कोई नहीं है फिर यहां पे, और उस मास्टर प्लानर को अच्छी तरह पता है कि खुदा है, खुद अल्लाह को रब कहता है और बंदों को उस रब से दूर फेंकता है। वरना कुरान करीम कहता है कि ये जब शैतान एड्रेस करता है खुदा को तो कहता है रब, यानी है, मैं कबूल करता हूं कि है, लेकिन बंदों को दूर फेंक रहा है। तो जो मास्टर प्लानर है उसको पता है कि खुदा है। अच्छा, अब उसको पता है कि खुदा है, उसने नीचे वाली जो क्लास थी उससे कहा तुम प्लानिंग करो कि खुदा का नाम नहीं आएगा, खुदा का नाम नहीं आएगा। ये जो बंदों के अंदर खुदा की डिमांड है ये कहां से पूरी होगी? इसका भी सोल्यूशन निकाला उसने, कहा हम इसको म्यूजिक से पूरा करेंगे, आर्ट्स से पूरा करेंगे, इसको हम लोगों के इमोशंस को म्यूजिक, आर्ट्स और ऐसी चीजों से पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि जिस आदमी को अपनी बॉडी के अंदर खाने की जरूरत है, खाने की मूवी दिखा के उसका पेट भर सकते हो क्या? मूवी पेट नहीं भरती है, 6 घंटे 8 घंटे मुमकिन है भूखा होके देखता रहेगा खाने को, एक वक्त चीख कर कहेगा मुझे खाना चाहिए, ये मेरा पेट नहीं भर रही है। 70 more than 70 years रशियन फेडरेशन ने अल्लाह के नाम से जंग की है, तमाम इबादतगाहों को बंद किया है, ताले लगाए, खोलने की इजाजत नहीं है, बहुत सों को मिसमार कर दिया, डिमोलिश कर दिया, क्या नाम खुदा खत्म हुआ है? नहीं। अब हम 21वीं सदी की जाहिलियत में इस बात को सोसाइटी के नाम पर फिर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछली सदी में सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म के नाम पर यह काम किया था, 21वीं सदी के अंदर फिर खुदा का मुकाबला अब हम किस नाम पे कर रहे हैं? सोसाइटी के नाम पे कर रहे हैं। और ये सोसाइटी को पावर किसने दिए? कह रहे हैं वोटिंग प्रोसेस ने इसको ये पावर दिए कि जो करना चाहे कर सकती है। अब आगे क्या होने वाला है? क्या इंसानों की जरूरत खत्म हो जाएगी? नहीं, जरूरत बाकी रहेगी। अच्छा, अगर जरूरत आपने पूरी नहीं की तो नेक्स्ट फेज में क्या होगा? इसका मतलब है एक स्पिरिचुअल डिसऑर्डर लोगों के अंदर क्रिएट होगा। स्पिरिचुअल डिसऑर्डर क्रिएट होगा तो क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये लोग अल्टीमेटली जंगों की तरफ जाएंगे। जब ह्यूमन सोसाइटी का केओस संभाले नहीं संभलता तो इसके मास्टर प्लानर क्या करते हैं? जंग करते हैं। अगर आप फरिश्तों के उस पहली शिकायत को देखें जो फरिश्तों ने इंसान के बारे में किए, वो क्या है? ये जमीन पे फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। जमीन पे फसाद बर्पा करेगा और ये खून बहाएगा। ये फरिश्तों को अच्छी तरह समझ में आ गया था ह्यूमन नेचर के अंदर उसके मटेरियल एस्पेक्ट को देखते हुए कि इनमें से कुछ लोग चूंकि मटेरियल एस्पेक्ट इनके अंदर है, ये गुमराही पे जाएंगे तो अपनी मादा परस्ती के अंदर खुदा का इनकार करेंगे। जब खुदा का इनकार करेंगे तो स्पिरिचुअल क्योस क्रिएट करेंगे और इस क्योस को संभालने के लिए एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे। ये इस काम को करेंगे। अब आपके सामने एक मिसाल अर्ज करता हूं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद इंतहाई सिविलाइज माशरे के इंतहाई एजुकेटेड और वेल ट्रेन्ड लोग डॉक्यूमेंटेड वो इनह्यूमैनिटीज कर रहे हैं जिनको देखकर इंसान का सर झुक रहा है। इंतहाई सिविलाइज सोसाइटीज के बहुत ज्यादा ट्रेन्ड लोग वो इनह्यूमैनिटीज कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड, जो कोर्ट्स के अंदर साबित हो गई हैं, जिसको देखकर इंसान का सर झुका हुआ है। क्या यह इस बात की निशानी है कि सोसाइटी में ऑर्डर है या यह इस बात की निशानी है कि सोसाइटी में डिसऑर्डर है? ये सोशल डिसऑर्डर की निशानी है। इसका मतलब क्या है? जाहिरी ऑर्डर के पीछे एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर छुपा हुआ है। अच्छा, अब यह डिसऑर्डर कहां जाहिर होता है? जब इसको एहसास होता है कि मेरे ऊपर कवर नहीं है, जब इसको यह एहसास होता है मेरे पास कवर नहीं है, मुझे कोई कवर करने वाला नहीं है, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, तो यह अपने डिसऑर्डर को खोल देता है। इन्नल इंसान लयदगा अर्राहु इस्तगना, इंसान यकीनन यकीनन तुगयान करेगा, बगावत करेगा जब भी अपने आप को बेनियाज पाएगा। जैसे ही देखेगा कि वो जो सोसाइटी का कवर था जो गॉड की रिप्लेसमेंट में आया हुआ है, जैसे ही देखेगा वो नहीं है, तो फिर जो दुनिया भर की एट्रोसिटीज हैं वो कर डालेगा। ये उस स्पिरिचुअल डिसऑर्डर का नतीजा है। अच्छा, अब सवाल ये, तो मैंने आपकी खिदमत में सारी थ्योरेटिकल बातें कर ली, हमारे अंदर वो जो स्पिरिचुअल कमी है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? खुदा नमता ने हमें इबादत का निजाम दिया, इबादत का एक निजाम दिया, कहा इस इबादत के निजाम को लेकर चलो, तुम्हारे अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं है। और उन इबादत की सपोर्ट के लिए खुदा ने मुताल ने अखलाक का निजाम दिया हुआ है कि ये जो इबादत होंगी ये उस वक्त असर दिखाएंगी जब ये अखलाकी निजाम तुम्हारे अंदर नाफिज होगा। और ये वो चीज है जो मैं फिर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, सिवाय इसके कि आप और मैं अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस में लेकर आए, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। यानी जिस तरह वो खाने की तस्वीर देखकर पेट नहीं भरता है, मानवियत की बातें सुनकर रूह को तस्कीन नहीं होगा, रूह को उसके रास्ते पे चलना होगा, तब रूह को असली तस्कीन होगा, वरना ये